समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में,
आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई
भारतवर्ष में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा गया है उनमें वसंत ऋतु लोगों की सबसे पसंदीदा ऋतु है, सबसे पसंदीदा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाए, खेतों में सरसों के फूल सोने की तरह चमकने लगे, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगे, आम के पेड़ों पर बौर आ जाए और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने और भंवरे भंवराने लगे, तो समझ लो वसंत आ गया। और इसी वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ माह के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव प्राचीन समय से ही भारत में मनाया जाता रहा है और ये त्योहार कहलाता है वसंत पंचमी। आज सूर्योदय होते ही पंचमी तिथि के अवसर पर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शाही स्नान आयोजित किया गया है। आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का इसी उत्सव के जिक्र के साथ। मैं हूँ आपके साथ नईम अख्तर और मेरे साथ हैं सुभद्रा रामचंद्रन। कैसी हैं सुभद्रा?
Good morning, Naeem. I'm doing well. And hello there, listeners. A very warm welcome to our news magazine program, Aaj Savere. Stay with us. Enjoy this Monday morning edition of the same. For starters, Naeem, we have some news headlines for them.
Ji, aur usme bhi sabse pehli khabar Maha Kumbh se. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। ये स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। इससे पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। सबसे पहले महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। चलते हैं अपने संवाददाता दीपेंद्र के पास जो इस समय महाकुंभ स्थल पर मौजूद हैं और जानते हैं उनसे वहां का आंखों देखा हाल। हेलो दीपेंद्र
जी। नहीं बताएं
दीपेंद्र, ये बताइए कि आप तो वहां मौजूद हैं, बसंत पंचमी के शाही स्नान के अवसर पर महाकुंभ में लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर?
नहीं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुबह से ही जो है श्रद्धालु जो है संगम में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती के जो ये पवित्र संगम तट पर है, ऐसा लग रहा है मानो जो है यहाँ पर आस्था की जो है बयार बह रही हो और हर हर गंगे का उद्घोष और समूचा वातावरण जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है भक्तिमय होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु, जिसमें महिलाओं की संख्या की बात करें बहुत ज्यादा है, और बसंत पंचमी के इस पावन स्थल पर गंगा में डुबकी लगा रही है। नहीं, मैं ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से जो है सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधु और संत भी जो है अपनी परंपरागत वेशभूषा में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन फिर भी सुबह 4:30 बजे करीब जो है यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और 5:30 के करीब इन्होंने स्नान किया है यहाँ पर। सबसे पहले बात करो श्री पंचायती अखाड़ा जो महानिर्वाणी है और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने जो है सभी संगम में जो है आस्था की डुबकी लगाई है। इस समय जो है बारी बारी से सभी अखाड़े जो है स्नान कर रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है इन अखाड़ों के स्वागत में खड़े हैं और हर तरफ जो है हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष से जो है श्रद्धालु जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। जी नहीं
जी, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन इस अवसर पर सुरक्षा प्रबंध के बारे में क्या व्यवस्था की गई है उसकी जानकारी भी दीजिए।
जी जी नहीं, आपको बता दूं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है वहां पर जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर ड्रोन और CCTV के माध्यम से जो है पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं के जो आने और जाने का रास्ता जो है इस बार जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है ताकि वो आसानी से पवित्र स्नान कर सके। इससे पहले मौनी अमावस्या में जो है एक ही रास्ते से वो आ रहे थे जा रहे थे, जिस कारण से काफी ज्यादा भीड़ जो है एक जगह एकत्रित हो जा रही थी, तो इस बार जो है बिल्कुल अलग है। इसके अलावा बता दूं कि सभी प्रवेश मार्ग में जो मिला है वहां पर सिविल पुलिस के अलावा जो है पैरामिलिट्री फोर्स के जो है जवान जो है यहां तैनात हैं और संगम के जो विभिन्न घाट हैं वहां पर जो है गोताखोर के अलावा जो NDRF के जवान हैं वो भी तैनात हैं। मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय बलों की लगभग 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। और खासतौर पर संगम नोच पर महिलाओं की ज्यादा भीड़ होने के कारण जो है महिला सीआरपीएफ की दो कंपनियां वहां पर तैनात है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर जो है साइनेज लगवाए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है आसानी से जो है अपने घाट पर पहुंच सकें। जी नहीं
जी, आपके पीछे से भी जो आवाजें आ रही हैं वो बता रही हैं कि वहां के लोगों में कैसा उत्साह है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
The Ministry of Culture, in collaboration with Akashwani, launched a special classical music program, Har Kanth Mein Bharat, at Akashwani Bhavan in New Delhi yesterday. The program will be broadcast live from 21 Akashwani centers every day till February 16, from 9:30 to 10 a.m. The event was inaugurated by the Secretary in the Ministry of Culture, Arunish Chawla, and CEO of Prasar Bharati, Gaurav Dwivedi. Director General of Akashwani, Dr. Pragya Paliwal Gaur, was also present on the occasion.
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ ये रिपोर्ट पेश करेंगे। वो संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखेंगे। ये रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहले ही सौंपी जा चुकी है। JPC ने वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन करके मसौदा रिपोर्ट 29 जनवरी को तैयार कर ली थी। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति व्यक्त की है। इससे पहले JPC ने वक्फ विधेयक 1995 में 14 खंडों और धाराओं सहित 25 संशोधन को मंजूरी दी थी। सदन का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।
Today is the last day of campaigning for the Delhi Assembly elections. Leaders and star campaigners from BJP, AAP and Congress have left no stone unturned to woo the voters with roadshows, door-to-door campaigns and public meetings across the city. A total of 699 candidates are in the fray. Elections for the 70-member Delhi Assembly will be held on Wednesday and the counting of votes will take place on Saturday. Our correspondent has filed this report.
Delhi is witnessing a three-way contest between BJP, Aam Aadmi Party and Congress in the polls. Over 1 crore 56 lakh voters are set to exercise their electoral franchise and decide the fate of the candidates. Voting will take place at 13,760 polling stations in the national capital. The Election Commission is taking various voter-friendly measures to ensure voter participation in the polls. A queue management solution, QMS app, has been launched to make voting experience smoother and faster. More than 35,000 Delhi police personnel, 19,000 home guards and 220 CAPF companies will be deployed for ensuring security on the day of voting. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि NVS-02 अंतरिक्ष यान पर लगे थ्रस्टर्स के नाकाम रहने से उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित करने के प्रयासों को झटका लगा है। इस उपग्रह को GSLV-MK2 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र के 29 जनवरी को प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण ये उपग्रह इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। ये उपग्रह एक अंडाकार भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है जो नेविगेशन प्रणाली के लिए उपयुक्त नहीं है। इसरो ने कहा कि उपग्रह प्रणाली स्वस्थ है और उपग्रह वर्तमान में अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अंडाकार कक्षा में नेविगेशन के लिए उपग्रह का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक मिशन रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। GSLV रॉकेट द्वारा उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के बाद इस पर लगे सौर पैनल सफलतापूर्वक तैनात किए गए, लेकिन बिजली उत्पादन नाम मात्र रहा। इसरो ने कहा कि ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार स्थापित हो गया है। GSLV से प्रक्षेपण सफल रहा क्योंकि सभी चरण सुचारू रूप से संपन्न होने के बाद उपग्रह ने पृथ्वी के कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया।
Vice President Jagdeep Dhankar said that the country cannot have millions of illegal migrants and allow the electoral politics to be disturbed by demographic dislocations, as he appealed to the youth to neutralize anti-national narratives. Jagdeep Dhankar, also the chairman of Rajya Sabha, voiced concerns over frequent disruptions in Parliament. Speaking at the World Forum of Accountants, WOFA conference, organized by the Institute of Chartered Accountants of Delhi, Accountants of India, in the national capital yesterday, he said the youth should be concerned about their existential challenges, expressing concerns that some people and entities are not feeling good with the country's development journey. The vice president also said there is a trend to generate sensation and narratives. Moving on to the world of sports now, in men's T20 cricket, India registered a whopping 150-run win against England in the fifth and final match of the series played at Wankhede Stadium in Mumbai last night and won the five-match series by 4-1. We have more from our correspondent.
Put into bat first, the Indian team scored 247 runs with a loss of 9 wickets in the stipulated 20 overs. Abhishek Sharma played a starring role with the bat with the knock off 135 of 54 balls, which also saw him create the record for most sixes by an Indian in the T20I innings. Chasing a target of 248 runs set by India, the English side was bundled out for 97 runs in just 10.3 overs. Abhishek Sharma was declared player of the match and Varun Chakravarti was declared player of the series. Moving towards chess, Indian Grandmaster R. Pragnananda clinched the prestigious Tata Steel Masters 2025 title in a thrilling showdown, defeating reigning world champion D. Gukesh in a nail-biting tiebreaker last night at Wijkaanse, Netherlands. This victory makes R. Pragnananda the first Indian since Vishwanathan Anand in 2006 to claim the prestigious title.
और अब आज सवेरे में प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ खबरें चेन्नई से हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह।
Yes, Naeem, starting with news from Chennai, four fishermen from Andhra Pradesh were detained by Tamil Nadu wildlife authorities for using trawlers without mandatory turtle excluder devices along Chennai coast. After the episode of Olive Ridley deaths in Chennai coast, the state government has taken firm action against the violators. The detainees were taken to the wildlife headquarters in Velachery, Chennai. The fishermen were intercepted near Ennore Thermal Power Station by a patrol team of Wildlife and Fisheries Department officials on Saturday. Officials discovered 16 live Olive Ridley sea turtles trapped under fish in their nets. The patrol team cut the net to free the turtles into the sea. The mechanized trawlers are barred from fishing within the restricted 5 nautical mile zone, but the trawler was found operating about 3.5 nautical miles from Chennai. And Naeem?
जी, दिल्ली से हम बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है. भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं. सभी दलों के नेता शहर भर में रोड शो, घर घर जाकर चुनाव प्रचार और जनसभाएं कर रहे हैं. कुल 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी शनिवार को होगी. और एक और खबर है मेरे पास दिल्ली से, सुभद्रा. दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के बारे में बात कर रही हूँ. राजधानी के भारत मंडप में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कल पहले रविवार को देश भर से बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी पहुंचे. इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ शैक्षणिक किताब, उपन्यास और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन पर प्रकाशित किताबों के स्टॉलों पर देखने को मिली. इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए पवेलियन में भी लोग बच्चों के साथ किताबों की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए. इस पवेलियन में बच्चों के पसंदीदा कार्टून पर आधारित कॉमिक्स, बुक्स और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं का विशेष आयोजन किया गया है. 9 दिवसीय इस पुस्तक मेले में 50 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं. पुस्तक प्रेमियों के लिए ये मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुला है.
And we are going to Bangalore now. The Bharat Darshan study tour of Kashmiri youth who are in Karnataka since last week visited the National Military Museum in Bengaluru yesterday. The tour was organized by the 10th Battalion of Sashastra Seema Bal based in Srinagar. The 30 Kashmiri youths learned the rich military history, technical advancements and the sacrifices made by the armed forces to safeguard the country. They viewed the exhibits showcasing India's defense heritage, military equipment, and the contributions of the armed forces. The objective of the tour was to leave a lasting impression on the students, inspiring them with a deeper sense of patriotism and appreciation for the country's defense forces.
Maharashtra Film Rangmanch aur Sanskritik Vikas Nigam ne 78 mein Kan Antarrashtriya Film Mahotsav mein Film Bazaar 2025 ke liye Marathi filmon ke liye pravishtiyan aamantrit ki hain. 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली फिल्में आवेदन के लिए पात्र हैं। आवेदन filmcitymumbai.org पर उपलब्ध हैं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। मराठी फिल्मों को वैश्विक प्रदर्शन प्रदान करने और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलने के लिए निगम 2016 से कान में भाग ले रहा है।
Yes, moving to Hyderabad now, Naeem, the Telangana government, which conducted the survey, submitted its report to the cabinet subcommittee headed by State Civil Supplies Minister Uttam Kumar Reddy. The minister informed that the report would be presented before the state cabinet tomorrow. On the same day, it would be placed before a special session of the Legislative Assembly for debate.
और कोलकाता की बात करें तो रविवार को यानी कि कल पूरे पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा मनाई गई। सरस्वती पूजा की तिथि आज सुबह 9:58 पर समाप्त होगी। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेज के छात्र भाग ले रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा देवी सरस्वती के प्रति पूरी श्रद्धा और गंभीरता के साथ मनाई जाती है। महानगरों की खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल, जिसमें सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आज धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कोलकाता में आज आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की का अनुमान है। और बाकी शहरों का बताइए।
यस नईम, स्टार्टिंग विद चेन्नई, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई विल बी सीन लेटर ऑन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग, मिनिमम टेम्परेचर वाज 19 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
और अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। 3 फरवरी के दिन क्या क्या खास दुनिया भर में हुआ उस बारे में जान लेते हैं।
Plenty of things happened this day, yes. And we are starting with the year 1690. The first paper money in America was issued by the Massachusetts colony. The currency was used to pay soldiers who were fighting in the war against Quebec. And 1815, the world's first commercial cheese factory was established in Switzerland. And February 3, 1863, writing under the name of Mark Twain, Samuel Clemens begins publishing news stories in the Virginia City Territorial Enterprise. And 1867, Prince Mutsuhito becomes Emperor Meiji of Japan at the age of 14. And 1870, this day, 15th Amendment granted voting rights to African American men.
अगर हम भारत वर्ष में वापस लौटने तो आज ही के दिन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई।
1917, the US broke off diplomatic relations with Germany due to their policy of unrestricted submarine warfare. And in 1919, the very first meeting of the League of Nations was held. President Woodrow Wilson was head of this committee. The purpose of this committee was to promote international security as well as world peace. This organization was later replaced by the present day United Nations, that is UN. The goals of the UN are very similar to the goals of the League of Nations.
1925 में आज ही के दिन भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई और 1934 को पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ।
In 1966, the Soviet Union's Luna 9 became the first spacecraft to make a soft landing on the moon. And in 1995, the space shuttle Discovery blasted off with a lady Air Force Lieutenant Colonel Aileen Collins in the pilot seat for the first time in NASA history.
1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई। 1988 में पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र भारतीय सेना में शामिल हुई।
And 2009, Harry Potter author J.K. Rowling is named a Chevalier of the French Legion of Honor.
2007 में चीन ने मल्टीपर्पस नेविगेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया और 2018 में भारत चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता बना। और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने श्रोताओं तक पहुंचानी है। तो अब हम पहुंचते हैं उस जगह जहाँ हम बात करेंगे उन महान शख्सियतों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिवस है। सबसे पहले बात कर रहे हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान की, बहुत बड़ा नाम है। सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक। इनका पूरा नाम कुरैशी अल्लाह रखा खान है। अल्लाह रखा खान अपने को पंजाब घराने का मानते थे। अल्लाह रखा खान 12 वर्ष की उम्र से ही तबले के सुर और ताल में माहिर थे। उस्ताद कादिर बख्श से भी उन्होंने तबला वादन की शिक्षा ली। उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक संगीतकार के रूप में पंजाब में ही शुरू किया। 1945 से 1948 के बीच सिनेमा जगत में भी अपनी किस्मत आजमाई। संगीत के क्षेत्र में उनके एक योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1977 में पद्मश्री और 1988 में संगीत नाटक अकादमी ने भी आपको जीवन पर्यंत संगीत सेवा देने के लिए अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया। तो इतनी बड़ी हस्ती की तबला वादन की कुछ अगर थाप हमारे कानों में ना जाए तो बात अधूरी रह जाएगी।
And friends, it's not easy to be a pioneer, but oh, it's fascinating. I would not trade one moment, even the worst moment, for all the riches in the world, quote unquote. Here's a real life saga of a lady physician, doctor, who went through hurdles to be accepted in a medical college, but then her determination and efforts paid off. She got what she wanted and became the first woman doctor, physician, to get a medical degree and practice as a doctor. Yes, friends, English-American physician Dr. Elizabeth Blackwell is the first lady doctor of medicine to get an MD. Way back then, women practiced medicine without any degrees. Blackwell sought professional status to a subject that was dear to her heart. While rejected by all the major medical schools in the nation, her application to Geneva Medical School was accepted with reluctance. Working with quiet determination, she turned aside the hostility of the professors, students, who were mostly males, and all those people in her town. She earned a medical degree in 1849 and ultimately opened her own medical college for women. Dr. Blackwell was born on 3rd February 1921, passed away at the age of 89. And friends, today is the day the music died. Yes, friend, saddest day in the history of music, 1959. Rock and roll musicians Buddy Holly, he was only 22 years of age. Richie Valens, 17, and the Big Bopper Richardson, 28, were killed in a plane crash near Clear Lake, Iowa. The disaster gained its name the day the music died. Singer-songwriter Don McLean eulogized the incident when he wrote this classic, American Pie, that talks about the tragic accident and the day the music died.
Me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye.
और आज ही पुण्यतिथि है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण बिहार में जन्मे हिंदी के यशस्वी कहानीकार। हालांकि उन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी से की, लेकिन आगे चलकर उपन्यास भी लिखे, संस्मरण भी, हास्य व्यंग्य नाटक एकांकी पर भी अपनी कलम चलाई और बच्चों के लिए भी खूब लिखा। यानी देखा जाए तो साहित्य की शायद ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें राधा कृष्ण की कलम से कुछ ना निकला हो।
Indian freedom fighter Suhasini Ganguly was born this day. She dreamt of a free India, so fought with all her might to achieve that. And in fact, a street in Kolkata has been named Suhasini Ganguly Sarli to honor her sacrificing life and adventure. She was born this day in 1909.
और उनकी नाम पर जैसे कि आपने बताया कोलकाता की एक सड़क का नाम रखा गया है. साथ ही एक और बात भी है कि स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी महिलाएं इस नाम की एक पुस्तक है, उसमें भी उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है.
And friends, German composer, pianist, music conductor, teacher, one of the most celebrated figures of early Romantic period, Felix Mendelssohn was born this day in 1809 in Hamburg, Germany. Among his most famous works are Overture to a Midsummer Night's Dream, Italian Symphony, a Violin Concerto, two Piano Concerti, the Oratorio Elia, and several pieces of chamber music. The melody that's flowing in the background is Symphony No. 4, Opus 90, The Movement, Allegro Vivace.
और आज जन्मदिन है वहीदा रहमान का, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री. भारतीय फिल्म इतिहास के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान. गाइड, प्यासा, चौथे का चांद, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम, ये कुछ उन फिल्मों के नाम है जो वहीदा रहमान की उल्लेखनीय फिल्में हैं. वहीदा रहमान का चयन 2013 की भारतीय फिल्म हस्ती के शताब्दी पुरस्कार के लिए किया गया. उन्हें ये पुरस्कार गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 20 नवंबर 2013 को प्रदान किया गया. 1972 में पद्मश्री, 2011 में पद्म भूषण और 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया. उनके अगर गीतों की हम बात करें तो एक के बाद एक इतने गीत याद आते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा गाना सुने और कौन सा छोड़े. Richie Kotzen, guitarist of American rock band Poison, turns 55 years of age today. Friends, born in Reading, Pennsylvania, Richie was soon taken by music and first began playing the piano at age 5. And at the age of 7, he was inspired by New York City band Kiss to learn the electric guitar. He has a unique style, of course, which he has described as a mix of rock, jazz, fusion, soul music. Was it something I said, something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. और आज ही जन्मदिन है दीप्ति नवल का. एक हरफन मौला कलाकार के रूप में उन्हें जाना जाता है. 80 और 90 के दशक में मशहूर अभिनेत्रियों में दीप्ति नवल का नाम शामिल है. एक अभिनेत्री होने के अलावा कवियत्री, कहानीकार, गायिका, फोटोग्राफर और पेंटर भी हैं दीप्ति नवल. कई चर्चित हिंदी फिल्मों में नजर आई जैसे चश्मे बद्दूर, कथा, मिर्च मसाला और आगे जी. जन्मदिन है दुती चंद का भी, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि उनके बारे में और बात की जाए. बस वक्त है ये कहने का कि अनुमति दीजिए नईम अख्तर और सुभद्रा रामचंद्रन को कार्यक्रम आज सवेरे यही समाप्त करने की.
Stay tuned, for coming up now is Samata Prabha, the Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15. Thanks for tuning in, friends. Have a great day. Namaskar. Namaskar.